ओम शांति। बाबा ने हमारी सभी अरमाने पूरी कर दी। किस किस की हाथ उठाए जरा। बाबा ने हमारी सभी अरमाने पूरी कर दी, सभी आश पूरी कर दी। हमने बाबा के कितने अरमान पूरे किए? किसे लगता है हमने बाबा के अरमान पूरे कर दिए? वो हाथ उठाए। अभी ऑन द वे हैं, कर रहे हैं, दिल में आना चाहिए। जिसने हमें जन्म दिया, हमें पाला, बड़ा किया, हमें गुणों से, शक्तियों से श्रृंगारित किया, अपने सर्व वरदानों से सजाया, ऐसे माता पिता की आश, उनके अरमान हमें जरूर पूरे करने हैं। जन्म जन्मांतर तो मनुष्यों के अरमान पूरे करते आए हैं, उनके लिए जीते मरते आए हैं। यही एक संगम युग हमें मिलता है, जिसमें भगवान अपने अरमान, अपनी आश हमारे सम्मुख रखते हैं। आधे कल्प से तो हम ही अपनी आशाएं उसके सामने रखते रहे हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये हो जाए, वो हो जाए, और वो पूरी करते आए। तो केवल अभी नहीं, लेकिन पूरे आधे कल्प से जब से हमें जरूरत पड़ी उनके, तब से वो हमारे सारे अरमान पूर्ण करते आए। लिस्ट लंबी हो सकती है बाबा की आशाओं की, लेकिन अब इस सीजन में जो बाबा ने अपनी सुंदर आशाएं हमारे सामने रखी हैं, वही मैं आप सबके सम्मुख रख रहा हूं ताकि वो ताजी हो जाएं। बाबा मुरली में हमें बहुत सारे कार्य, अपनी प्रेरणाएं देकर जाते हैं, अपनी आशाएं रख के जाते हैं। ऐसा ना हो कि हम वो सुने, आगे बढ़ जाएं, उसे अंडरलाइन करें कि बाबा ने ये बात मेरे लिए कही है और ये कार्य मुझे करना ही है। जब ऐसी एक दृढ़ता रहेगी, ऐसी वो बात हमारे स्मृति पटल पर रहेगी, तो अवश्य ही हम उस पर पुरुषार्थ करेंगे। और जब बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए हम आगे एक कदम बढ़ाते हैं, तो बाबा भी प्रसन्नता पूर्वक, दिल की दुआओं और आशीष पूर्वक हजारों कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं, और हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये सब तो अनुभव करते हैं ना। तो बाबा की इस सीजन की जो पहली मुरली थी 10 अक्टूबर को जो बाबा आए, उस मुरली में बाबा ने अपनी आश और प्रेरणा हमारे सम्मुख रखी कि संगम पर आप बच्चों को जो स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा, स्वमान की माला बहुत बड़ी है, इस स्वमान की माला बनाओ, एक एक दाना गिनते जाओ और नशे में लवलीन हो जाओ। कितने सारे स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, स्मृति दिलाई है। बाबा चाहते हैं कि उन एक एक मड़के के समान है, पुष्प के समान है, हमारे लिए एक एक स्मृति है। उस स्मृति को बाबा ने कहा, उस दाना को गिनो, अर्थात अपने स्मृति में लाओ और लवलीन होते जाओ। तो स्वमान की माला सबने बाबा के होमवर्क देने के बाद बनाई। मधुबन में हम लोगों ने स्वमान की माला बनाई तो 1008 स्वमानों की सुंदर माला बन गए। हम भी ये स्मृति का सुंदर, स्वमानों का सुंदर अपनी डायरी पेन ले लें सभी, और ये एक्टिविटी है अभी का सेशन, तो ये हम यहां से शुरू करें, फिर इसे आगे बढ़ाइएगा। इंस्टेंटली कौन कौन से स्वमान जो बाबा ने मुझे दिए हैं याद आते हैं, उसको इस रूप में लिखें, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, जिसे बाबा कहते हैं जब भी मैं शब्द स्मृति में आए उसके साथ एक स्वमान याद कर लो। चले सभी थोड़ा अंदर चले। इंस्टेंटली बाबा को देखते हुए सामने की भगवान आए, उन्होंने मुझे कितने श्रेष्ठ स्वमान के आसन प्रदान किए, कितने श्रेष्ठ स्वमान के पुष्प प्रदान किए, मेरे गले में स्वमान की माला डाल दे। लिखे भगवान ने मुझे ये स्वमान दिए कि बच्चे तुम साधारण नहीं हो, महान हो, विशेष हो, पूर्वज हो। बनाए अपने लिए माला कम से कम 11। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, भगवान का राइट हैंड, भगवान के नैनों का तारा, सृष्टि का आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, खुद को उस नजर से देखें जिस नजर से भगवान हमें देखते हैं। रोज बाबा ये स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। मुझे इस एक एक दाना को गिनते हुए नशे में लवलीन रहना है, बाबा मुझे ऐसा देखना चाहते हैं। लिख ली, माला बन गई, माला बन गई आपकी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कितने लिखे, चल रहा है माला बस 3 मड़के की होगी, माला में तो कम से कम 108 मड़के होने चाहिए, कम से कम 11। अच्छी स्मृति के साथ कि मैं ये हूं, इस कार्य को आगे भी आप कंटिन्यू रखिएगा। मैंने जस्ट शुरुआत बाबा के स्वमानों से की है, इसकी माला बनाइएगा। आज भी दोपहर में जब आपके पास वक्त होगा, अब इसी सुंदर स्थिति में, अब आज सुबह की मुरली की ओर मैं आपको लिए चलता हूं। बाबा ने कहा, कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं है। ये इन मुरलियों से अलग आज की मुरली में आप अपनी विशेषता अपनी डायरी में नोट करो। बाबा ने मुझे कौन सी विशेषता दी है, 1, 2 या 3, ज्यादा भी हो सकते हैं। अंदर चलो। बाबा ने कहा, संगम युग में हर एक ब्राह्मण, चाहे वो अंतिम दाना भी क्यों ना हो, हर एक को विशेषता प्राप्त है। उस विशेषता को पहचानो, कार्य में लगाओ। अपनी डायरी में नोट करें, मेरे अंदर कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषताएं हैं। लिखने की हो सकती है, भाषण करने की हो सकती है। सबको बाबा से कनेक्ट करने की हो सकती है, कर्मणा की कोई हो सकती है। कौन सी विशेषता है मेरे अंदर, अपने आप को देखो। ढूंढो, मिली सबको विशेषताएं। हाथ उठाएं जिनको विशेषताएं मिल गए, अच्छा। जिनको नहीं मिली, नहीं मिली या नहीं लिखी, लिखिए। हम दूसरों को बहुत देखते हैं लेकिन खुद के अंदर बहुत कम जाते हैं। मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे कई बार हम ध्यान नहीं देते उस पे और इसलिए काम पे भी नहीं लगाते। जो भी स्थूल भी विशेषता है, ईश्वरीय कार्य में कितना लगाते हैं। अच्छा चलिए, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा होगा, अब थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे को उनकी विशेषता बताएंगे, जिनको आप जानते हैं, विशेष एक ही स्थान से हैं। खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, जिन्हें आप जानते हैं, 1, 2, 3। अब आप सामने वाले को उनकी विशेषता बताइए कि आपके अंदर ये विशेषता, जिन्हें आप थोड़ा जानते हैं, राइट, बगल में बैठे हैं ऐसा नहीं, जिन्हें आप जानते हैं। चलिए उनके पास पहुंचे, ढूंढे उन्हें, उन्हें उनकी विशेषता बता के आइए। हाँ, कुछ लोग बैठे ही हैं, खड़े हो जाइए और ढूंढिए, बताइए विशेषता। विशेषताओं का दान भी करना है ना। आ जाइए, एक दूसरे के पास जाइए और उन्हें उनकी विशेषता बताइए कि मैंने आपके अंदर ये विशेषता देखी है, आपके अंदर ये खूबी है, आपके अंदर ये कला है। इसमें कंजूसी ना करें, जरूर जाएं, एक दूसरे के पास जाओ, निकलो अपने स्थानों से और देखो। बैठिए। अब जो विशेषताएं आपको बताई सामने वाले ने, उन्हें भी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। क्या आपके ध्यान में थी ये विशेषता? जो विशेषता आपको बताई गई, उस विशेषता को भी नोट कर लीजिए। कई बार हमें पता नहीं होता, सामने वाला उस चीज को हमारे अंदर देखता है। अब वो भी मेरी विशेषता है, उसे भी मुझे कार्य में लगाना है, राइट? ये कार्य जरूर करते रहे। यहां आपने शुरू किया, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट एक शुरुआत की है, हर एक चीज की शुरुआत, स्वमान लिखने की भी शुरुआत, माला बनाने की है, अभी पूरी नहीं हुई है, होमवर्क है, कीजिएगा। विशेषता बताने की, देखने की भी और बताने की। हम दूसरों की कमी कमजोरियां देख लेते हैं और उसे नहीं बताते, लेकिन थर्ड पर्सन को, फोर्थ पर्सन को बताते हैं, देखो ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। क्यों ना एक चेंज लाएं, है ना? क्यों ना एक चेंज लाएं, जिसकी विशेषता है उसी उसकी वो विशेषता भी बताएं और थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन से उसकी विशेषता शेयर करें। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? ऐसा करेंगे तभी तो फरिश्ते बनेंगे ना, तभी तो विशेष बनेंगे। तो नोट कर लें जो विशेषता आपको बताई गई, ये हमारे लिए बहुत अमूल्य है। इसे अपनी सेवाओं के कार्य में लगा के हम अपनी श्रेष्ठ जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। इस पे भी वर्क करेंगे सभी, ठीक है? चलें, बाबा ने आगे कहा पहली मुरली में ही, कई चीजें नेचुरल नेचर बन गई हैं तुम्हारी, जिसमें देह अभिमान भी है, आदतें भी हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा भी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं, देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर, जो मैं हूं। हम जो नहीं हैं वो बन के जी रहे हैं, देह नहीं है देह बन के जी रहे हैं, पद पोजीशन हमारा नहीं है, देहधारी हमारे नहीं हैं, लेकिन वही हमारे हैं और उन्हीं के लिए हम जिए जा रहे हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। और पिछले 2-3 दिनों की मुरली आपने देखी होगी, उसमें भी बाबा लगातार देही अभिमानी, देही अभिमानी, देही अभिमानी कह रहे हैं। देही अभिमानी बनने से पापों का बोझा खत्म होगा, देह अभिमान को भगाओ तो बहुत मीठे बन जाओगे, जितना याद उतना देह अभिमान टूटेगा। लगातार बाबा देही अभिमानी की बात करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी शुरुआत में ही प्रैक्टिस की, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, नारायण भी आत्मा, राधिका भी आत्मा, जो भी घर के नजदीकी संबंधी थे, सब आत्मा 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 आत्मा। हम इस प्रैक्टिस को बहुत डीप करें, ये हमारी शुरुआती बेस है, हमारी आध्यात्मिक साधना का बेस है, जो हम कोर्स में कराते हैं कि जब तक वायर के ऊपर से उसका वायर नहीं हटाया तो कनेक्ट नहीं होता ना, पावर जो है जाएंगे नहीं यहां से वहां, दो तारों के बीच के ऊपर का हटाना पड़ता है ना उसका जो भी है, अंदर तब कनेक्टिविटी होती है। आत्माभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे तो कनेक्शन। तो चलिए अब अपने परिवार के सदस्यों को जैसे बाबा ने प्रैक्टिस की, आप उनके नाम लिखते हुए, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, जो जो आपको याद आते हैं यहां बैठे हुए भी, बेटा याद आता है, पति याद आते हैं, पत्नी याद आती है, मित्र याद आते हैं, कम से कम 5 लोग बहुत क्लोज रहते हैं हमारे, लिखो ये आत्मा है। प्रैक्टिस यहीं से प्रैक्टिस करें उनके नाम सहित, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। चाहो चित्र बना दो, आंख कान नाक आत्मा। जब भी उनका नाम याद आए, चेहरा याद आए, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, लिखें। जो जो यहां रह के भी मुझे याद आ रहे हैं, आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, केवल इस जन्म में मेरे साथ हैं, जन्म जन्म तो लोग बदलते रहे हैं, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा है। पक्का कर लें अपनी आत्माभिमानी स्थिति, आत्मिक दृष्टि को मुझे बहुत पक्का करना है बाबा की तरह, ये मेरी साधना है, ये मेरे योग को बढ़ाने वाला है, ये मुझे संपन्न संपूर्ण बनाने वाला सबसे पहला पाठ। अब खड़े हो जाएं, डायरी रख दे, खड़े होकर आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करते हुए हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। पेयर बना ले, पेयर बना ले, बैठेंगे और जैसे अभी सबके भ्रिकुटी तख्त पर ही नजर थी ना, वैसे ही एक नेचुरल नेचर बना ले कि जब भी बात करें भ्रिकुटी तख्त पर ही मेरी नजर हो, वहां देखते हुए मैं बात करूं तो देह की ओर ध्यान भी नहीं और ना देह का कोई आकर्षण या बंधन। दूसरी मुरली की ओर चलते हैं जो बाबा ने अपनी आश रखी। दूसरी मुरली में कहा नए संस्कार द्वारा ही नया संसार बनेगा, आपके नए संस्कार से नया संसार। तो बाबा ने कहा देखो नए संसार की विशेषताएं कहां तक अपने जीवन में लाई हैं, और नए संसार की मुख्य विशेषता एक राज्य, एक राज्य। तो बाबा ने कहा कि स्व के राज्य के साथ साथ कहीं माया का राज्य तो नहीं चलता आपके अंदर, परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या माया के दबाव में भी कभी कभी आ जाते हो, तो एक राज्य कहां तक है। चलें थोड़ा अंदर चलें और अपने स्वराज्य काल तख्त पर बैठ जाएं। आप सब भविष्य के तख्त नशीन है ना, जो जितना अभी तक अकाल तख्त नशीन होंगे, स्वराज्य तख्त नशीन होंगे, जितना अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन करेंगे, वही भविष्य के सारी कल्प के राजा होंगे। तो चलें बैठ जाएं अपने अकाल तख्त पर राजा बनकर और चेक करें अपने अंदर चल, मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां कितने मेरे आज्ञा का पालन करते हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी राजा भ्रिकुटि तख्त पर विराजमान हूं, अकाल तख्त नशीन मालिक हूं, देखें अपने सामने अपने राज्य दरबारियों को। मन कितना मेरे अनुसार चलता है, सकारात्मक रहता है, श्रेष्ठ चिंतन में रहता है, या अनियंत्रित है। मेरा मंत्री है, जैसा मैं आदेश दूंगा कि वही सोचेगा। आंखें देह को तो नहीं देखते, संसार में तो नहीं भागते, आदेश दें आंखें तुम्हें केवल आत्मा को देखना है, अच्छाइयों को देखना है। कान व्यर्थ की बात तो नहीं सुनते, मुख व्यर्थ में तो नहीं रहता। राजा आदेश दो कि मेरी सभी कर्म इंद्रियों तुम्हें श्रीमत अनुसार ही चलना है, ईश्वरीय आज्ञा का ही पालन करना है। देखें अपने सब कर्मेंद्रियों को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दें। मैं शक्तिशाली राजा और मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे नियंत्रण में अनुशासित। रोज ये दरबार लगाना है ताकि सभी नियंत्रित रहें, ईश्वरीय आज्ञा पर चलें। दूसरी बात बाबा ने कही, भविष्य राज्य के एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। वहां चार पांच धर्म नहीं, तो एक धर्म है पवित्रता की धारणा। वर्तमान पवित्रता की धारणा धर्म ही भविष्य के एक धर्म का आधार। तो बाबा ने कहा अब चेक करो पवित्रता की नेचर भी कितना नेचुरल बनी है, और चेक करो कितनी परसेंटेज में पवित्रता के व्रत को निभा रहे हो। अपने आप को डायरी में अब मार्क्स दीजिए। बाबा का होमवर्क है, आश है पवित्रता नेचुरल हो, तो मेरे मन की पवित्रता कितनी प्रतिशत है, वचन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति स्वप्न की पवित्रता कितनी है। मन से व्यर्थ सोचते रहना ये भी बाबा ने कहा अपवित्रता है। वाणी को भी वेस्ट में लगाए रखना अपवित्रता, अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध चिंतन, केवल दैहिक नहीं लेकिन अशुद्धता कितनी है। परसेंटेज देखें अपनी, भट्ठी में आए हैं हमें अच्छे से चेक करना है, बाहर बाहर नहीं। मेरा मन संपूर्ण पवित्र हो, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना से भरा हुआ, शुद्ध संकल्पों में मन मना भव, वाणी से भी बाबा की सुंदर बातें, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली अच्छी बातें, कर्म भी दूसरों को प्रेरणा देने वाले, स्वप्न भी बिल्कुल शुद्ध सात्विक, दृष्टि सबके लिए निर्मल। देखें ऐसी पवित्रता कितनी आई है। अभी यदि मुझे अपने आप को मार्क्स देने पड़े अपनी पवित्रता की, तो वो कहां तक है। दिल शिकस्त होने की बात नहीं, लेकिन यदि मैं नीचे हूं, मुझे टॉप में पहुंचना है। पवित्रता के सागर की संतान हूं, उनका वरदान मुझे है। एक कदम मैं पवित्रता की दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाऊंगा, वो मुझे अपने समान बना लेंगे। मन ही मन संकल्प कर लें आज अपनी परसेंटेज को देखकर, इसे मुझे 100% करना ही है। जैसे मेरे पिता वैसा मैं। वो पवित्रता के सागर, तो मेरे पास अपवित्रता का अंश नहीं हो सकता। जैसे वो वैसा मैं। अंदर से दृढ़ता पूर्वक एक संकल्प, अब तक जैसा भी रहा, बीती सो बीती, अब मुझे संपूर्ण पवित्र बनना ही है। दृढ़ता, इस भट्टी से एक सुंदर अपने लिए ऐसे ऐसे संकल्प दृढ़ता के करके चलने हैं, जो मुझे आगे आने वाले समय में विश्व के स्टेज पर सेवा में उपस्थित करते हैं। भगवान अपनी गोद में बिठा लें, अपने नैनों में बिठा लें, अपने कंधों पर बिठा लें। पवित्रता। आगे बाबा ने इसी मुरली में कहा, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, तीन शब्द बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है। अचानक के खेल होने हैं, इसलिए बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। इसीलिए तीन शब्द बाबा ने सुनाए और ये कहा, कब और कहां भी किसका अंतिम काल हो सकता है। तो अचानक के पेपर के लिए हम रेडी हैं। मान लीजिए अभी बाबा कहते हैं, अभी यहीं से ऊपर चलना है, अभी घर वापस नहीं जाना है, तो कौन कौन तैयार है? सच्चे दिल से है? सच्चे तैयार है? अब बाबा कहेंगे तब तो खैर चलो तैयार है, लेकिन अचानक मुझे पता चलता है कि एक सीवियर सी बीमारी है मुझे, और अब मेरे पास एक ही महीने का समय है। तैयार हैं इस स्थिति के लिए? या ये मन में आएगा, बहुत गंभीरता से विचार कीजिए, अभी यदि ये पता चले बस एक मास समय है, कोई सीवियर सी तकलीफ है मुझे, फिर जाना है, क्या मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जैसे आज बाबा ने कहा, या मन पश्चाताप से भर जाएगा? ऑनेस्टली देखो, अपने आप को देखो कि इतना समय मैंने वेस्ट किया, काश मैंने अपने समय को इन इन कार्यों में लगा लिया होता, अपना ये सफल कर लिया होता, अपना तन मन धन, ये आएगा या फिर प्रसन्नता पूर्वक हम तैयार रहेंगे। मान लीजिए किसी ने आपको व्यवसाय में बहुत बड़ा धोखा दे दिया, आप बैंकरप्ट हो गया, पूरा का पूरा धन चला गया, अचानक होगा ना? प्राकृतिक आपदाएं अचानक आएंगी। आप यहां बैठे हो, यहां अच्छी स्थिति है, आप घर में हो, अचानक भूकंप हुआ, पूरा का पूरा घर गिर गया, सारे के सारे संबंधी जायदाद समाप्त हो गया, आप अकेले रह गए, अकेले, अचानक होगा, क्या तैयार हैं ऐसी स्थिति के लिए? कोई भी चीज बता के नहीं आएगी, बाबा ने कहा, विनाश नेक्स्ट पल भी होने वाला होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारा काम है एवर रेडी रहना। एवर रेडी है, समेट लेंगे तुरंत। अभी हम योग में बैठते हैं, 3 मिनट के लिए बैठते हैं, क्या हम समेट पाते हैं 3 मिनट के लिए अपने आप को? या इतना विस्तार है कि हम उस विस्तार को ही समेटने में हमारे 3 मिनट लग जाते हैं, उस विस्तार को ही समेटने में हमारा आधा घंटा लग जाता है। देखें, एवर रेडी अर्थात निकले, डिटैच्ड, तैयार कि बाबा मैं तैयार हूं, मेरा बैग बैगेज रेडी है। इसीलिए अब संबंधों का विस्तार, साधनों का विस्तार, इन सब विस्तारों को समेट के रेडी रहें। इसलिए बाबा ने कहा, अचानक होगा, एवर रेडी रहो। और अभ्यास बहुत काल का चाहिए, ये नहीं कि हम तुरंत तैयार हो जाएंगे। एक माता जी थे, मनोहर दादी जी उनकी कहानी सुनाया करते थे, 25-30 वर्षों से ज्ञान में थे। बोलती थी, मैं बिल्कुल एवर रेडी हूं, जब बुलावा आएगा बाबा का मैं चल पड़ूंगी। अंत समय आया, वो निकल ही नहीं पा रही थी देह से, शरीर ही नहीं छोड़ पा रहे थे। सबने बहुत योग भी कर लिया तो भी शरीर नहीं छोड़ रहे थे। अब उनके छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी को ना गोलगप्पे बहुत पसंद है, पानी पूरी, तो हो सकता है मम्मी को पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही। अब सबने कहा, ऐसा थोड़ी होगा, इतने सालों से, 25-30 वर्षों से ज्ञान में, ये तो बिल्कुल मुक्त सब चीजों से है, ये तो कहती रही कि मुझे जब बाबा बुलाए मैं चल पड़ूंगी, मैं सब तरफ से डिटैच हूं, एवर रेडी हूं, लेकिन आत्मा देह क्यों नहीं छोड़ पा रहे। अब बेटे ने कहा कि मम्मी को पानी पूरी बहुत पसंद था, सबने सोचा कि चलो वे खिला के देख ले। मम्मी के लिए पानी पूरी बनाया गया, पानी पूरी बना के, पानी पूरी जैसे ही मम्मी के अंदर गया, पानी पूरी अंदर और मम्मी बाहर। तब इसको तेवर रेडी नहीं कहेंगे ना, कि आत्मा कहीं अटकी हुई है, कहीं फंसी हुई है ना, तो हमें पता नहीं चलता कितनी छोटी छोटी चीजों में। इसलिए कहा, बहुत सूक्ष्मता से देखें और बहुत काल डिटैच रहने की प्रैक्टिस, सूक्ष्मता से चेकिंग करने की। किसी भी व्यक्ति अपने देह के संबंधों, अपनी साधनों, पदार्थों, अपनी पद प्रतिष्ठा, इन सब चीजों में व्यक्ति अटैच्ड है। देखो, यहां रहते हुए तुरंत मैं जा पाऊंगा या? इसलिए लंबे समय तक उन सब को बाबा को अर्पित करके बाबा ने सेवा अर्थ दिया है। मैं तो अवतार हूं, आया हूं, बुलावा आया और चले, ये सुंदर सी प्रैक्टिस हमारी हो। नेक्स्ट मुरली में बाबा ने हम सबको खुश रहने और खुश करने की प्रॉमिस कराई, का प्रॉमिस करो, हा? कुछ भी हो लेकिन हमारा चेहरा खुशनुमा रहे, चेहरे की खुशी ना जाए। हा? तो कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं, कौन कौन हमेशा खुश रहता है, सदा जरा हाथ उठाए। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छा है। बरेली में खुशनुमा आत्माएं ज्यादा है, पुणे में भी है। कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं, जरा शेयर करेंगे 2-4 पॉइंट। हाँ जी, जिन्होंने हाथ अच्छा चलो भाई, जिन्होंने, हाँ हाँ बताइए बहन से। बाबा मेरे साथ रहते हैं, ओके, इसीलिए खुश, कोई परिस्थिति आने नहीं देते, आती भी है तो भी बाबा साथ है तो उसका फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा, और जिन्होंने हाथ उठाया भाई, हाँ बताइए। खुशी खुशी से बाबा सर्व संबंधों से साथ है, बहुत अच्छा। हाँ जी, और पीछे। हाँ वो तो रहना है, लेकिन खुश रहने के लिए आप क्या करती हैं फिर? हल्के रहना है, मतलब कोई कुछ भी बोले हमें हल्के रहना है तो खुश रहेंगे, बोलने वाले तो बोलेंगे, है ना। वो एक गीत भी है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, तो लोग कहते रहे हम तो खुश रहेंगे, ठीक है। और संतुष्टता, हर बात में कल्याण ही है, तो हम अपनी खुशी क्यों गुम करें। जी आप, हाँ, तो इसलिए खुश रहते हैं आप, बहुत अच्छा। और पीछे वाले, पीछे वाले खुश नहीं रहते हर परिस्थिति में? ओके, और पीछे, हर आदमी का अपना अपना पार्ट है। ओके, तो यदि वो पार्ट कुछ गलत बजा रहा हो तो आपके रास्ते में कांटे बो रहा हो, आपको भला बुरा कह रहा हो, आपकी आपकी चाय में वो नमक डाल देता हो तो खुश रहे, ठीक है। परिस्थितियां हैं, बातें हैं, खुश रहने के लिए आपने जो पॉइंट्स कही हैं उस पर भी गहराई से चिंतन करके अच्छी अच्छी बातें निकालिएगा। बाबा के जो महावाक्य हैं, उन महावाक्यों के सुंदर सिमरण में रहने से, बाबा के साथ रहने से, ज्ञान एक बहुत बड़ा बल है, योग बहुत बड़ा बल है। और आप सबने जो बातें सुनाई, ड्रामा भी बहुत सुंदर, कल्याणकारी, हितकारी है, उनके आधार पर हम अपनी खुशी को रखें। सिमर सिमर सुख पाओ, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का जितना सुंदर सिमरण होगा हम प्रसन्न चित्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, जितने ऊपर रहेंगे उतने आनंदित रहेंगे, बेहद में रहेंगे आनंदित रहेंगे, हद में है दुखी होंगे। ये बात रही कि मैं खुश रहूं, ये मेरे अपने हाथ में फिर भी ज्ञान के आधार पे है। खुश कैसे करेंगे? चलिए फिर से एक एक्टिविटी कर लेते हैं, हा? खड़े हो जाएं आप सब, फिर से एक एक पेयर बनाएं। अब आपको अपने सामने वाले को खुश करना है, होमवर्क है। आप कैसे खुश करेंगे अब आपके ऊपर है। चलिए, बाबा ने कहा है कि तुमको खुश रहना है और सबको खुश करना है, हमने एक को ही खुश करने का कार्य दिया है। चलिए गुदगुदी नहीं करना कि मुझे खुश करना है, आप कुछ ऐसा सुनाएं, कुछ ऐसा बोलें कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, या आप कुछ भी करो, चलो आपके ऊपर है। खुश करें, हो रहे हैं खुश या नहीं हो रहे हैं? अब प्यार से हाथ मिलाएं, प्यार से गले मिल लें, है ना, प्यार से अप्रिशिएट करें, कुछ अच्छी शुभ भावनाओं के दो शब्द बोलें, तो इससे तो जरूर सामने वाला खुश होगा ना। हाँ, जरूर जरूर ये करें, प्यार से, है ना, आत्मिक दृष्टि से, रूहानी दृष्टि से प्यार भरे दो शब्द, अप्रिशिएट करने वाले दो शब्द खुश करते हैं। अच्छा, कौन कौन खुश हुआ जरा हाथ उठाए? वाह वाह, बहुत सुंदर भाई। एक बार चलिए ताली तो नहीं बजा रही, लेकिन ताली जरूर बजा लें, यहाँ खुशी की ताली है। बैठे बैठे, हम जितने प्रसन्न रहेंगे उतने दूसरों को प्रसन्नता दे पाएंगे। ये तो एक स्थूल एक्टिविटी है कि चलो हम अपने बोल के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा सामने वाले को खुश करें। लेकिन बाबा ने आज जो प्रसन्नता की बात कही, जो प्रसन्न है उसके वाइब्रेशन ही सामने वाले को प्रसन्न कर देते हैं, उनकी चलन ही सामने वाले को प्रसन्न कर देती है। हमारी ये स्थिति हो, बाहर से, बाह्य रूप से अप्रिशिएट जब करते हैं, दूसरों को सुखदाई बोल बोलते हैं, उनके लिए शुभ भावना के बोल बोलते हैं, अब बहुत आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, आप बाबा के राइट हैंड बनो, आपने जो भी अपने जीवन में संकल्प लिया है वो पूर्ण हो, जब हम ऐसे दूसरों को अप्रिशिएट करते हुए, उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए दो शब्द बोलते हैं, तो कैसा भी दुखी व्यक्ति हो, कैसा भी परेशान हो, उसके अंदर साहस आ जाता है, खुशी आ जाती है। तो हम इसे भी अपने शब्दों में जरूर शामिल करें। मिलते तो रोज है ना एक दूसरे से, तो मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ ऐसे शब्दों का लेन देन करते हैं, करते हैं ना, करते हैं ना, करते हैं ना, नहीं करते तो इसे करें, सामने वालों की विशेषता और सामने वालों की अच्छी बातों को जरूर अप्रिशिएट करें। ये खुश करने का एक सुंदर साधन है। अब बाबा ने इसी मुरली में एक बात कही, किसी भी बात में कभी घबराना नहीं। मेरा बाबा कहा, बाबा हाजिर हो जाएगा। तो बाबा ने कहा सिर्फ दिल से कहना ऐसा नहीं, मेरा बाबा, लेकिन बाबा भी बच्चों का प्यार है तो बाबा ऐसे हाजिर हो जाते हैं। तो कोई भी घबराहट है, चलो थोड़ी देर के लिए, वैसे हम आंख बंद नहीं करते, लेकिन आंख बंद करो, थोड़ी देर के लिए जो भी मन में भाव, चिंता या घबराहट है, परिवार को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी कोई बीमारी या कोई भी बात है जो कभी घबराहट पैदा कर देता है कि क्या होगा, क्या होगा, तो बाबा ने कहा घबराना नहीं, आंखें बंद, दिल से बाबा ने कहा ना, मेरा बाबा कहा और बाबा हाजिर हो जाएगा, दिल से मेरा बाबा कहें और फील करें जैसे बाबा ऊपर से नीचे मेरे सामने आ गए, अव्यक्त रूप में, और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया, अपना राइट हैंड अपने सिर पर रखें, आंखें बंद, फील करें बाबा सामने और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, मेरी सारी घबराहट, सारी चिंता, सारे दर्द, सारी तकलीफें बाबा के इस वरदानी हाथ से समाप्त होता जा रहा है। मैं बिल्कुल निर्भय, निश्चिंत और हल्का होता जा रहा हूं। बाबा मेरे साथ, मेरे सम्मुख, मेरी सारी घबराहट, मेरे अंतर के द्वंद को हरते हुए दिल से बाबा को शुक्रिया करते हुए हाथ नीचे करें और दिन में कई बार बाबा को ऐसे ही बुला लें, मेरा बाबा कहा, बाबा मेरे सम्मुख। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो, दिन में कई बार, 5 बार कम से कम। कुछ भी हलचल लग रहा हो, कुछ भी बात समझ में ना आ रही हो, कुछ भी भारीपन लग रहा हो, दिल से भगवान उवाच है, मेरा बाबा कहा, बाबा हाजिर हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा कितना निश्चय है, मेरा कितना उनसे प्रेम है, कितना अटूट नाता है, इस बात पर यह निर्भर करता है, अनुभूति, ये अनुभव जरूर ये करें हम। नेक्स्ट बाबा ने कहा, बाबा से प्यार है तो बाबा को प्यार में रिटर्न भी तो देना है ना। बाबा ने कहा बाबा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी ना रह जाए। बाप से प्यार है तो प्यार का रिटर्न तो देंगे ना, प्यार का रिटर्न है। अब देखो प्यार का क्या रिटर्न, देखो बाबा हमारे लिए इतना करते हैं, हमारे सब अरमानों को पूर्ण कर रहे हैं, हमारे एक बुलावे पर फटाफट ऊपर से नीचे आ जाते हैं हमें हल्का करने के लिए, तो रिटर्न क्या देना है बाबा को, अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो, अपनी कमी को चेक करो, क्या कमी है अभी तक, रिटर्न दो, क्या टर्न करो, अपने आप को टर्न करना ये रिटर्न है, तो रिटर्न देने की हिम्मत है ना। अभी दिल में पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना ही है। चलो अब फिर से अपनी डायरी में लिखो, अंदर चलो, क्या टर्न करना है मुझे, मैं क्या रिटर्न दूं ऐसे प्यारे बाबा को, जो बाबा ने कहा अपनी कमी, अपना कोई स्वभाव या संस्कार जो चला आ रहा है, जो बाबा को प्रिय नहीं है, जो ज्ञान के अनुकूल नहीं है, मुझे उस संस्कार, उस आदत, उस कमी को टर्न करना है। लिखें अपनी डायरी में, बाबा आपके प्यार में रिटर्न मैं ये दूंगा इस भट्टी में, अपनी इस आदत, इस कमी को टर्न कर लूंगा। हिम्मत रखो, बाबा की मदद होगी। दिल से, दिल से मेरी ये कमी है, हर एक जानता है क्या कमी है उसके पास। मैं इस कमी को पूरी तरह टर्न करके मधुबन से जाऊंगा। आपके प्यार का ये रिटर्न है, आपने मुझे इतना दिया है, इतना दे रहे हो, मैं आपके लिए छोटी सी कमी को टर्न नहीं कर सकता। अपवित्रता है, कंप्लीट पवित्रता का प्रण। अमृत वेला मुरली मेरी मिस होती है, मैं उसको इग्नोर करता हूं। प्रण करो, कभी मेरी अमृत वेला मुरली मिस नहीं होगी। टर्न कर लो, पर चिंतन की आदत है, टर्न कर लो। पर दर्शन की आदत है, टर्न कर लो। टकराने की आदत है, टर्न कर लो। क्या है? अलबेलापन है, आलस्य है, टर्न। प्यार में तो बलिहार कर देते हैं, और मधुबन से अच्छी जगह क्या होगी? फिर से खड़े हो जाएं एक मिनट के लिए, और पक्का व्रत लेंगे, प्रतिज्ञा करें बाबा के सामने अपने आप को टर्न करने की। जो संकल्प किया, इस कमी को, इस संस्कार को, इस स्वभाव को मुझे टर्न करना है, टर्न करेंगे। अपने दिल पे हाथ रखें और दिल से बाबा से प्रतिज्ञा करें। दीदी आप बैठे रहे, आप बैठे, दिल से प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा आपने जो मुझे इतना दिया है, उसके रिटर्न में मैं अपने इस संस्कार, इस स्वभाव, इस कमी को टर्न करूंगा ही, टर्न करके ही मधुबन से जाऊंगा। दिल से बाबा को सामने देखते हुए, दिल से प्रतिज्ञा। गहराई से अपने अंदर उतरने दें अपनी प्रतिज्ञा को। भगवान के सामने मैं ये प्रण करता हूं, उनके प्यार को अपने दिल में समाते हुए अपनी इस कमजोरी को हमेशा के लिए मैं टर्न करूंगा। अपने जीवन को ही संपूर्ण परिवर्तित कर लूंगा, वैसा बन जाऊंगा जैसा बाबा मुझे देखना चाहते हैं, मुझे बनाना चाहते हैं। देखें बाबा भी मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं, अपनी शक्तियों की बरसात, अपने वरदानों की बरसात कर रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे शुभ संकल्प में मैं हमेशा साथ हूं। मेरी तो यही आश है कि तुम जल्द से जल्द मेरे समान बन जाओ। बस तुम्हें भी यही दृढ़ संकल्प रखना है। बैठेंगे और सुंदर गीत के साथ इस सत्र को संपन्न करेंगे कि बाबा आप एक ही संकल्प, अपनी सर्व कमी कमजोरियों को आपको अर्पित करके आपके समान बनना है।